आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अर्चना है।
आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का 11वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। इसमें बताया गया है कि कब से हमारे सिनेमा ने जो है वो बोलना सीखा। आपको बता दूं कि भारतीय पहली फिल्म 1913 में बनी थी, जिसका नाम था हरिश्चंद्र, और ये एक मूक फिल्म थी। मूक यानी गूंगी फिल्म, जिसमें आवाज नहीं थी। तो 1913 में ये पहली फिल्म बनी थी और इसके बाद से जो फिल्में बनती रही वो सभी मूक फिल्में ही थी, जिनमें कोई आवाज नहीं थी। तो पहली बोलती फिल्म कब बनी? पहली बोलती फिल्म 1931 में बनी थी, जिसका नाम था आलमारा। तो ये वही है कि सिनेमा ने कब बोलना सीखा और उसके बाद की कहानी जो है वो इसमें दी हुई है इस पाठ में, तो उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली स्वाक बोलती फिल्म आलमारा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। 14 मार्च 1931 को पहली बोलती फिल्म आई, जिसका नाम था आलमारा। इसके पोस्टर जो छपे थे उन पर कुछ ऐसी पंक्तियां लिखी थी कि वे सभी सजीव हैं, जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं और बोल रहे हैं, और 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, आप उनको बोलते बातें करते देख सकते हैं। इस तरह का कुछ इश्तिहार विज्ञापन जो था वो छपा हुआ था। यही वो महान दिन था। ये भारतीय इतिहास में एक काफी खास दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे भारतीय सिनेमा में एक बड़ा बदलाव हुआ था, और वो बड़ा बदलाव यही था कि भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा था उस दिन, क्योंकि उस दिन पहली बोलती फिल्म जो थी वो आई थी। उस समय तक जो मूक सिनेमा था वो भी काफी लोकप्रिय था। लोगों को मूक फिल्में भी काफी पसंद आने लगी थी, लोग उनको देखना पसंद करते थे। और जिस साल ये बोलती फिल्म आई, उस साल कई और मूक फिल्में भी आई थी जो जिनमें आवाज नहीं थी। ऐसी भी कई फिल्में आई थी अलग अलग भाषाओं में। तो मगर इस फिल्म के आने के बाद एक नया दौर, फिल्मों का एक नया दौर शुरू हुआ। वो कैसा दौर था? बोलती फिल्मों का दौर। आगे बढ़ते हैं। पहली बोलती फिल्म आलमारा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सो वॉट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम, वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलमारा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी भी संगीतकार या गीतकार का नाम जो है स्वतंत्र रूप से नहीं डाला गया था। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। पहली बोलती फिल्म आलमारा को बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। इन्होंने 1929 में हॉलीवुड की मतलब विदेश की फिल्म देखी थी, जिसका नाम था सो बोट। इस फिल्म को देखने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें भी कोई बोलती फिल्म बनानी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक नाटक था, उसकी जो कथा थी उसको उन्होंने आधार बनाया, मतलब जो नाटक की कहानी थी उसी कहानी को उन्होंने आधार बना लिया ये नई फिल्म बनाने के लिए। उस नाटक में जो गाने थे उन गानों को वैसा का वैसा ही उठाकर इस फिल्म में ले लिया गया, मतलब उन गानों में कोई बदलाव नहीं किया गया, वो जैसे थे वैसे के वैसे ही फिल्म में डाल दिए गए। एक इंटरव्यू में अदे सिर ने कहा था कि उनके पास ना तो कोई संवाद लेखक था, मतलब जो राइटिंग करते हैं, स्क्रिप्ट जो लिखते हैं मूवी की, वो उनके पास नहीं था, गीतकार भी नहीं था और संगीतकार भी नहीं था, कोई गाने लिखने वाला भी नहीं था और कोई म्यूजिक देने वाला, म्यूजिक कंपोज करने वाला भी नहीं था, क्योंकि पहले की फिल्में जो थी वो मूक थी, गूंगी थी, तो उनमें इन सब की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो ये सब इन लोगों के पास नहीं थे उस वक्त, तो इन सब की इन्होंने शुरुआत करनी थी। इसके लिए अरदेसिर ने फिल्म के गानों के लिए खुद की ही धुनों को चुना और उस समय जो संगीत था उसमें सिर्फ 3 वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया गया था। आजकल तो काफी सारे वाद्य यंत्र जो है वो इस्तेमाल होते हैं एक गाना बनाने के लिए, लेकिन उस समय जो वाद्य यंत्र यूज हुए थे उसमें सिर्फ 3 यंत्र थे, वो क्या थे, तबला, हारमोनियम और वायलिन, सिर्फ ये 3। आलमारा फिल्म में किसी भी संगीतकार या गीतकार का नाम जो है स्वतंत्र रूप से नहीं डाला गया था, जैसे कि आजकल की फिल्मों में आप देख सकते हैं हर किसी का नाम होता है, म्यूजिक का राइटर कौन है, म्यूजिक को गाया किसने है, म्यूजिक किसने दिया है, सब कुछ, मतलब संगीतकार, गीतकार, सबका नाम आपको मिल जाएगा, लेकिन इस फिल्म में किसी को ऐसा श्रेय नहीं दिया गया था, स्वतंत्र रूप से, खुले रूप से नहीं दिया गया था। और इस फिल्म का पहला गाना जो था, इस फिल्म में पहला गाना जो था हमारे भारतीय सिनेमा का जो पहला गाना है वो कौन सा था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है, ये हमारे भारत का पहला गाना है, फिल्मी गाना। आगे बढ़ते हैं। आलमारा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी, मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलमारा की शूटिंग रात में होने के कारण इसे कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी, यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलमारा का जो संगीत था वो डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड उस समय नहीं किया गया था, इसीलिए जो साउंड की वजह से क्या हुआ कि शूटिंग इनको रात में करनी पड़ती थी। जो पहले फिल्में बनती थी, जो गूंगी मूक फिल्में जो बनती थी जिनमें आवाज नहीं होती थी, वो फिल्में दिन में ही बना ली जाती थी, दिन में ही शूट कर ली जाती थी, तो इसलिए उनको लाइटों की जरूरत नहीं पड़ती थी, लाइटिंग की। लेकिन आलमारा जो फिल्म बनी इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी, इसलिए इनको लाइटिंग की जरूरत पड़ी और इसी से एक नया जो काम था वो शुरू हुआ, कौन सा, प्रकाश प्रणाली, जिसमें आगे फिल्म निर्माण, जो आगे आज फिल्म निर्माण का जो लाइटिंग है वो बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है, बहुत जरूरी हिस्सा है, क्योंकि बिना लाइटिंग के शायद फिल्मों का बनना अब बहुत मुश्किल है। आलमारा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अरदेसिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 स्वाक फिल्में बनाई। आलमारा ने भविष्य के लिए कई स्टार दिए, मतलब हीरो हीरोइन जो भी हैं, और कई अलग तकनीशियन भी दिए, लाइटिंग का काम जिन्होंने किया होगा, जिन्होंने म्यूजिक का काम किया, कंपोज किया, ये सब, और इनकी अरदेसिर की कंपनी ने ही अकेले 150 से ज्यादा मूक फिल्में बनाई थी और लगभग 100 बोलती फिल्में इन्होंने बनाई। आलमारा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी, फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया, इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे, फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल, वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे, उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है, विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी, पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया, विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। आलमारा जो फिल्म है वो एक फैंटेसी फिल्म है और इसमें हिंदी और उर्दू की मिश्रित भाषा, जो हिंदुस्तानी इस समय प्रयोग में लाई जाती थी, उस समय हिंदुस्तानी भाषा बोली जाती थी जिसमें हिंदी और उर्दू के मिले जुले शब्द होते थे, दोनों भाषाओं के मिले हुए शब्द होते थे। इसमें इस फिल्म के संगीत, गीत और जो इसमें नृत्य है, नाच है, वो काफी अनोखा है, देखने लायक है। फिल्म की नायिका जो हीरोइन थी वो थी जुबैदा और जो नायक थे हीरो वो थे विट्ठल। ये उस समय के सबसे ज्यादा पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे, मतलब उस समय सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले या सबसे ज्यादा जो पैसा लेते थे एक मूवी बनाने के लिए, ऐसे हीरो उस टाइम के थे विट्ठल। इनको कैसे चुना गया इसके बारे में भी एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, किस्सा है कि कहते हैं कि पहले विट्ठल को लिया गया था इस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन उनको उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी, वो जल्दी ठीक से नहीं बोल पाते थे, तो इस वजह से उन्हें हटाकर उनकी जगह दूसरे हीरो को लिया गया जिनका नाम था महबूब। लेकिन इस बात से विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। आगे उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलमारा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। विट्ठल का केस मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा जो उस टाइम के बहुत मशहूर लॉयर थे, और इसमें इस मुकदमे में विट्ठल की जीत भी हुई। अरदेसिर को इन्हें अपनी फिल्म में लेना पड़ा और इस तरह से आलमारा फिल्म के जो नायक थे वो विट्ठल बने। इस फिल्म को कामयाबी हासिल हुई और इसके आगे भी विट्ठल ने काफी फिल्में बनाई। कई फिल्मों में, मराठी हिंदी फिल्मों में उन्होंने नायक और स्टंटमैन का भी कार्य किया। आलमारा फिल्म में और कई लोग भी थे जैसे सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी, इन्होंने भी अभिनेता के रूप में कार्य किया इस फिल्म के अंदर। इन्होंने भी फिर आगे चलकर फिल्म के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। 14 मार्च 1931 को पहली बार ये फिल्म लगी थी मैजेस्टिक सिनेमा में। 8 सप्ताह तक ये फिल्म जो थी बिल्कुल हाउसफुल चली और भीड़ इतनी ज्यादा होती थी कि पुलिस के लिए उसे कंट्रोल करना भी मुश्किल होता था। कुछ लोगों ने इसे भड़कीली फैंटेसी करार दिया, फैंटेसी का नाम दिया, लेकिन जो दर्शक थे, देखने वाले थे, उनको लिए ये बहुत ही अनोखा अनुभव था क्योंकि उन्होंने पहली बार बोलती फिल्म देखी थी। भारतीय सिनेमा में इससे पहले कोई बोलती फिल्म नहीं बनी थी, तो ये एकदम मतलब अलग ही अनुभव है क्योंकि इससे पहले जब आपने कोई बोलती फिल्म ना देखी हो तो फिर बोलती फिल्म देखना, पहले आप सिर्फ चित्रों को देखने के आदि थे, आपको सिर्फ चित्र देखने के लिए मिलते थे लेकिन आपको कोई आवाज सुनने के लिए नहीं मिलती थी, तो उसके बाद जब आपको आवाज सुनने को मिलती है तो ये बिल्कुल अलग ही दिखता है। तो ये दर्शकों के लिए बहुत ही रोमांचक था, उनको इससे बहुत अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने ये फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे बनाने में 4 महीने का वक्त भी लगा था। स्वाद फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान, इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण स्वाग सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। इसके बाद बोलती फिल्मों के बनने का दौर जो है वो शुरू हो चुका था, तो पौराणिक कथाओं और पारसी रंगमंच के नाटक और प्रेम कथाओं को अपने विषय के रूप में चुना गया ताकि बोलती फिल्म जो है वो इनके ऊपर बनाई जा सके। इसके अलावा कुछ सामाजिक विषय वाली फिल्में भी बनी, समाज में जागरूकता लाने के लिए भी फिल्में बनी, और ऐसी ही एक फिल्म थी जिसका नाम था खुदा की शान। इसमें एक किरदार ऐसा था जो महात्मा गांधी के जैसा था, इसलिए जो बोलती सिनेमा थी उसको ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन था और उन्हें ये पसंद नहीं था कि फिल्मों में कुछ भी ऐसा दिखाया जाए जो उनके अगेंस्ट हो, जो उनके विरोधी हो, और गांधी जी आप जानते हैं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ काफी आंदोलन किए थे, तो उनके जैसा एक चरित्र दिखाना ब्रिटिश प्रशासकों के लिए ये हानिकारक था, तो इसलिए वो ऐसी फिल्मों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए सिनेमा को उनकी नोकझोंक जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ी। स्वाग सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलमारा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय स्वाग फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। बोलती फिल्मों का जो दौर है उनकी शुरुआत करने वाले जो निर्माता निर्देशक थे अर्देशिर, वो काफी विनम्र स्वभाव के थे। 1956 में जब आलमारा फिल्म को पूरे 25 साल हो चुके थे तो उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय बोलती फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने वही किया है जो इस देश के लिए जरूरी था और इस देश के लिए मेरा भी कुछ योगदान देना बनता है और मैंने वही किया है, मैंने कुछ अलग नहीं किया। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था, अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलमारा के बाद प्रारंभिक स्वाग दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ, एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। जब बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो फिर पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्री, पढ़े लिखे हीरो हीरोइन, इनकी जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि पहले की फिल्में कैसी थी, मूक थी, उनमें बोलना नहीं पड़ता था, तो बस किसी ऐसे अच्छे दिखने वाले पहलवान जैसे शरीर दिखने वाले इंसान को ले लिया जाता था फिल्में बनाने के लिए, और जिसको एक्टिंग आती हो बस थोड़ी सी तो उसे ले लिया जाता था, लेकिन अब उससे काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि अब उन्हें संवाद भी बोलने थे, डायलॉग्स भी याद करने थे और गायन की प्रतिभा की भी कद्र होने लगी थी। क्यों? क्योंकि और इसके बाद क्या हुआ कि बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो गायक और अभिनेता भी बड़े पर्दे पर नजर आने लगे, मतलब जो हीरो होते थे वो एक्टिंग भी करते थे, गाते भी थे, एक साथ दोनों काम भी करने वाले लोग थे। और सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह बोलचाल की भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। पहले क्या था कि आवाज नहीं होती थी उसमें, सिर्फ शारीरिक, मतलब जिस तरह से आप शरीर जो भी कर रहे हैं उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जाता था कि ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनके हाथ पांव के प्रभाव से ही जो भी वो करते थे, जिस तरह के मूवमेंट्स वो करते थे उससे ही। लेकिन अब आवाज आ चुकी थी तो अब सिनेमा जो था वो ज्यादा देसी हो चुका था, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा जो थी वो उसमें प्रयोग करी जाती थी, कोई मुश्किल भाषा का प्रयोग उसमें नहीं किया जाता था। ये एक तरह से लोगों के लिए नई आजादी थी। और फिर आगे चलकर इन फिल्मों ने भारत के दैनिक और सार्वजनिक जीवन को जो है प्रतिबिंब के रूप में उभरा, कि आप अपने जीवन में जो घट रहा है उसको फिल्मों के द्वारा उसे बेहतर रूप में देख सकते थे। मतलब एक होता है कि क्या है और दूसरा है क्या होना चाहिए, तो आपके समाज में क्या है उससे लेकर फिल्मों में आप ये देख सकते थे कि क्या होना चाहिए, क्या इससे बेहतर क्या हो सकता है, इससे ज्यादा सही क्या हो सकता है, अच्छा क्या हो सकता है। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी, औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलमारा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में पसंद की गई। उस समय भी हीरो हीरोइन की लोकप्रियता वैसी ही थी जैसे आज होती है। जैसे आज के लोग हीरो हीरोइंस को काफी फॉलो करते हैं, कोई हीरो इस तरह के बाल कटवा लेता है तो आप भी कटवाने लग जाते हैं। जो भी युवक युवतियां हैं, यंग जो लोग हैं, वो लोग ज्यादातर फॉलो करते हैं। तो उस टाइम भी ऐसा ही था। उस समय एक फिल्म आई थी माधुरी नाम की, जिसमें जो हीरोइन थी उनका नाम था सुलोचना। उनकी जो हेयर स्टाइल थी वो लोगों ने बहुत पसंद की और औरतों को वो इतनी पसंद थी कि सारी औरतें ज्यादातर उसी प्रकार के हेयर स्टाइल करवाती थी। अरदेसिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी काम किया, ईरान के जो लोग थे उन्होंने भी काम किया। और आलम आरा जो फिल्म थी भारत के अलावा भी कई देशों में बहुत पसंद की गई, जैसे श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया के देशों में भी इस फिल्म को काफी ख्याति प्राप्त हुई, बहुत लोगों ने इसे पसंद किया। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को स्वाक सिनेमा के जनक अरदेसिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। भारतीय सिनेमा के जो जनक हैं, वो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। दादा साहब फाल्के जो हैं, वो भारतीय सिनेमा के जनक हैं। लेकिन बोलती फिल्मों के जो जनक हैं, वो अरदेसिर ईरानी कहलाए। ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की और दादा साहब फाल्के ने भी उनकी इस उपलब्धि को अपनाया, और उन्हें अपनाना ही था क्योंकि यहाँ से सिनेमा को एक नया मोड़ मिला था, एक नई जिंदगी मिली थी और भारतीय सिनेमा का एक नया युग जो है वो इस दिन से शुरू हो चुका था। आलम आरा फिल्म से बोलती फिल्मों का दौर जो है वो शुरू हो चुका था। प्रश्न अभ्यास पाठ से पहला प्रश्न, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टर पर छपने वाले वाक्य थे, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। उस फिल्म में कितने लोग थे? 78 लोग थे, 78 चेहरे थे। पहले की फिल्में मुंह हुआ करती थी, अब फिल्मों में लोग बोलते हुए नजर आएंगे। तो ये जो फिल्मों में काम कर रहे हैं 78 लोग, ये कैसे हैं? ये सब सजीव हैं, सांस ले रहे हैं और बोल रहे हैं। आपको इन्हीं 78 मुर्दा लोग जिंदा हुए हैं, मतलब यही लोग जब पहले फिल्में बनाते थे तो इसमें आवाज नहीं होती थी तो मुर्दा के समान जान पड़ते थे, लेकिन अब इनमें जान आ गई है, ये जिंदा हो गए हैं, आप इनको बोलते हुए बातें करते हुए सुन सकते हैं। तो इस फिल्म में कितने लोग थे, कितने चेहरे थे? 78। दूसरा प्रश्न, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अरदेसिर एम ईरानी को प्रेरणा कहां से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म बनाने के लिए आधार कहां से लिया, विचार व्यक्त कीजिए। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने के लिए फिल्म एम ईरानी ने सन 1929 में हॉलीवुड की बोलती फिल्म सोबोट देखी और उन्हें इसे देखकर हिंदी में बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली। उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर अपनी फिल्म की पटकथा बनाई और इस नाटक के कई गानों और संवादों को नाटक से ज्यों का त्यों ले लिया था। तीसरा प्रश्न, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया, विचार प्रकट कीजिए। आलम आरा फिल्म के लिए सबसे पहले विट्ठक को नायक के तौर पर चुना गया था, मगर उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी होती थी, वो ठीक से उर्दू नहीं बोल पाते थे, इस कारण उन्हें नायक से हटा दिया गया और उनकी जगह पर महबूब को नायक बनाया गया। विट्ठल को ये बात बुरी लगी और वो नाराज हो गए और फिर उन्होंने अपना हक पाने के लिए मुकदमा कर दिया। उनका मुकदमा उस समय के प्रसिद्ध वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था और वे मुकदमा जीत गए। इस प्रकार विट्ठल भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के नायक बने। चौथा प्रश्न, पहली स्वाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अरदेसिर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अरदेसिर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है, लिखिए। पहली स्वाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अरदेसिर को जो सम्मानित किया गया था तब सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय स्वाग फिल्मों का पिता कहा था। अरदेसिर ने इस अवसर पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। और इस प्रसंग में लेखक ने टिप्पणी करते हुए उन्हें विनम्र कहा है। लेखक ने ये भी कहा है कि भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को स्वाक सिनेमा के जनक अरदेसिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग जो है वो शुरू हो गया था। पाठ से आगे, पहला प्रश्न, मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। जब सिनेमा स्वाक हुआ, बोलने लगा, उसके बाद नायक नायिकाओं के लिए पढ़े लिखे ऐसे अभिनेता अभिनेत्रियों की खोज होने लगी जो अच्छा बोल पाते हैं। अब केवल चेहरे के भावों से काम नहीं चलने वाला था, बल्कि भाव सहित हिंदी और उर्दू बोलने वाले नायक नायिकाओं का जमाना आ गया था। इसका कारण ये भी था कि स्वाक फिल्मों से पहले मूक फिल्मों में दर्शक केवल नायक नायिका के चेहरे के भाव, उनकी उछल कूद को देखकर संतुष्ट हो जाते थे, लेकिन अब वे उनकी आवाज भी सुन रहे थे। यही नहीं, पहले जो फिल्में बनती थी वे प्राकृतिक प्रकाश मतलब दिन की रोशनी में बनती थी, लेकिन स्वाक फिल्मों के कारण फिल्मों की शूटिंग रात में कृत्रिम रोशनी में की जाने लगी, जो आर्टिफिशियल लाइटिंग है उसमें करी जाती थी। यही से प्रकाश प्रणाली का आरंभ हुआ, साथ ही भाषाओं, गीत, संगीत, पार्श्व गायक, पार्श्व गायिका आदि का महत्व भी बढ़ना आरंभ हो गया। दूसरा प्रश्न, डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है? डब फिल्में उन फिल्मों को कहते हैं जिनमें फिल्म के पात्र अभिनय तो करते हैं, लेकिन वे जो भाषा बोलते हैं उस भाषा की जगह किसी अन्य भाषा से उन संवादों गीतों को बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए अभी हॉलीवुड की जो लोकप्रिय फिल्में होती हैं, जिनको सभी लोग पसंद करते हैं, वो हॉलीवुड फिल्में इंग्लिश में होती हैं, लेकिन हम जब उन्हें इंडिया लेके आते हैं तो इंग्लिश में भी रहती हैं, लेकिन उनको हिंदी भाषा में डब भी कर दिया जाता है। जिन फिल्मों को हिंदी भाषा में डब कर दिया जाता है तो वो फिल्में फिर हिंदी में दिखाई देती हैं, जिससे कि भारतीय दर्शक जो हैं वो उसे आसानी से समझ सकते हैं। डब करने में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आता है। इसका कारण ये है कि अभिनेता, अभिनेत्री व अन्य पात्र के संवाद के संयोजन में कुछ कमी रह जाती है। ऐसा कई बार भी होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी दूसरी भाषा से डब करते समय फिल्म का कोई संवाद बिल्कुल उसी प्रकार नहीं बोला जाता जैसा वह मूल फिल्म में था। इस कारण अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आता है। इंग्लिश, मान लीजिए कि कोई हॉलीवुड फिल्म है जो इंग्लिश में है, उसको यहाँ हिंदी में हमने डब किया है, तो उनके मुंह चलाने और हम यहाँ आवाज जो आती है उसके बोलने में अंतर हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने उस वाक्य को इंग्लिश में कहा है और यहाँ उसे हिंदी में डब किया गया है, तो इसके लिए अलग अलग तरीके का उच्चारण जो है अलग अलग तरीके से होता है, आवाज अलग तरीके से निकलती है, तो इसलिए मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है। अनुमान और कल्पना, किसी मूक सिनेमा में बिना आवाज के ठहाकेदार हंसी कैसी दिखती होगी, कैसी दिखेगी? अभिनय करके अनुभव लिखिए। आप हंसिए बिना आवाज निकाले और फिर देखिए कि कैसा लगता है, और जैसा आपको अनुभव होता है उसे आप अपनी कॉपी में लिखिए। दूसरा प्रश्न, मूक फिल्म देखने का एक उपाय यह है कि आप टेलीविजन की आवाज बंद करके फिल्म देखें, उसकी कहानी को समझने का प्रयास करें और अनुमान लगाएं कि फिल्म में संवाद और दृश्य की हिस्सेदारी कितनी है। अगर आप कोई मूक फिल्म देखना चाहते हैं तो इसकी सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और फिर पूरी फिल्म देखिए। देखिए आपको फिल्म कितनी समझ आती है, क्या आपको उसकी कहानी समझ आई, और फिर अंदाजा लगाइए कि फिल्म में संवाद का, डायलॉग्स का और दृश्य का कितनी हिस्सेदारी है, कितना जरूरी है फिल्म में आवाज का होना, संवाद का होना, बातचीत का होना, उनका बोल पाना उनकी ताकि आप उन्हें सुन सकें, ये कितना जरूरी है। भाषा की बात, पहला प्रश्न, स्वाक शब्द वाक के पहले सा लगाने से बना है। सा उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों के साथ सा उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं। सा शब्द उपसर्ग होते हैं, किसी शब्द के आगे जो लगा एक शब्द जोड़ दिया जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं, आगे जो जोड़ा जाता है तो उससे जो है शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे वाक जो शब्द है उसमें सा आगे उपसर्ग के रूप में लगाया गया तब ये बना है स्वाक। तो यहाँ अन्य शब्द दिए हुए हैं, इनमें सा लगाना है और फिर देखना है कि इसके अर्थ में क्या परिवर्तन आता है। पहला शब्द है हित, इसमें अगर आप सा आगे उपसर्ग में लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सहित। हित शब्द का अर्थ होता है भलाई, किसी की भलाई चाहना। मतलब हम तो आपके हित की बात कर रहे हैं, मतलब हम आपके भले की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इसके आगे आप सा लगा देते हैं तो ये हो जाता है सहित। सहित का मतलब है साथ, किसी के साथ। मैं परिवार सहित रहती हूँ, मतलब मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। दूसरा शब्द है परिवार, इसका अर्थ होता है घर के सदस्य, सभी लोग, ये हमारा परिवार है। इसके आगे सा लगा देंगे तो ये हो जाएगा सपरिवार, मतलब पूरे परिवार के साथ। विनय, विनय का अर्थ होता है प्रार्थना करना, इसके आगे अगर आप सा लगा देंगे ये हो जाएगा सविनय, इसका अर्थ हो जाएगा प्रार्थना सहित। मैं विनती के साथ कहता हूँ, प्रार्थना के साथ कहता हूँ, प्रार्थना सहित कहता हूँ। अगला शब्द है चित्र, चित्र का अर्थ है तस्वीर और इसके आगे सा लगा देंगे तो हो जाएगा सचित्र, यानी चित्र के साथ, चित्र सहित। नेक्स्ट है बल, बल का मतलब है शक्ति या ताकत, इसके आगे सा लगाएंगे सबल, जिसका अर्थ है बल सहित या बलवान। सम्मान, सम्मान का अर्थ होता है आदर, इसमें हम सा उपसर्ग लगाएंगे ये हो जाएगा ससम्मान, मतलब आदर पूर्वक सम्मान के साथ। दूसरा प्रश्न, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं, वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता, इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द में पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। हिंदी के सामान्य उपसर्ग इस प्रकार हैं, आ, अन, नी, दू, क, कु, सा, सु, अद, बिन, औ आदि। पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों के ही अंश होते हैं। इनमें ये फर्क है कि उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के पहले लगता है आगे, और जो प्रत्यय होता है वो किसी भी शब्द के पीछे जोड़ा जाता है। पाठ में कई सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय युक्त है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे स्वाक शब्द जो है इसमें सा उपसर्ग है, सुलोचना इसमें सु उपसर्ग है, और लोचना आ जो है लास्ट वाला वो प्रत्यय है। जो असल वर्ड है वो क्या है, लोचन, लोचन के अंदर आगे सु लगाया गया, सु आगे लास्ट में पीछे प्रत्यय लगाया है आ, सुलोचना। फिल्म, इसमें उपसर्ग कुछ नहीं है, प्रत्यय है कार, फिल्म कार। कामयाब, इसमें भी उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय है ई, कामयाबी। इसी प्रकार के 15-15 वर्ड और खोजने हैं आपको पाठ से जिसमें प्रत्यय या उपसर्ग प्रयोग हुआ हो, और उनको अपनी कॉपी में लिखना है। यह आपका होमवर्क है, आपको ये पाठ समझ आ गया होगा बोलती फिल्मों के बारे में, कैसे हमारे भारत में बोलती फिल्मों की शुरुआत हुई, तो ये उसके बारे में इंटरेस्टिंग चैप्टर था। नेक्स्ट ऑडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।